हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम क्लास कैंटो 3 चैप्टर 16 वर्स नंबर 21 गिवन एट इस्कॉन फरीदाबाद ऑन 23 मार्च 2017 बाय मायसेल्फ प्रशांत मुकुंद दास
ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः
हरे कृष्णा। तो आज का श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सबका स्वागत है। स्कंद 3 के अध्याय 16 के श्लोक संख्या 21 पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं।
यम ताम विविक्ता चरिता अनुवर्तमानम् न आत्रिदियत् परम भागवत प्रसंग सात्वं द्विजनुपथ पुण्य रज पुनीता श्रीवास लक्ष्यं किं मगाभाग भाजस्त्वम् यस्तां विविक्ता चरितानुवर्तमानां न आत्यदित परं भागवत सात्वं द्विजनुपथ पुण्य रज पुनीत श्रीवास लक्ष्यं किमगा भाग भाजनस्त्वम् यस्तां विविक्ता चरिता अनुवर्तमानम् नता त्रिदियत् परं भागवत प्रसंगम् सात्वं द्विजनपथ पुण्य रज पुनीत श्रीवास लक्ष्यं किमगा भाग भाजनस्त्वम् यस्तां विविक्ते चरितानुवर्तमानम्
चरितानुवर्तमानम्
यस्ताम् विविक्ता चरिता अनुवर्तमानम्
अत्याद्रियत् परम भागवत प्रसंग
माता जी। अच्छा प्रभु जी प्लीज। तो अब हम अनुवाद पढ़ेंगे इसका। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव आप उस पथ की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं और अपने वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं। तात्पर्य बहस दिवाइन गेस्ट श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, किंतु समस्त ऐश्वर्यों से विरक्त रहने की भावना से वे उनमें से किसी के प्रति भी अनुरक्त नहीं होते। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं: असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान और असीम त्याग। सारे देवता तथा अन्य जीव लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान उन लक्ष्मी जी के प्रति अनुरक्त नहीं रहते, क्योंकि अपनी दिव्य सेवा कराने के लिए वे असंख्य लक्ष्मियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी लक्ष्मी जी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वे दल वहीं पर स्थित रहते हैं और हटते नहीं, जबकि लक्ष्मी जी उनके वक्ष स्थल पर स्थित रहते हुए भी कभी कभी उन अन्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जाती रहती है जो उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी जी को कभी कभी अपने असंख्य भक्तों को तुष्ट करने जाना पड़ता है, किंतु तुलसी दल कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा की अपेक्षा तुलसी की सेवा को अधिक चाहते हैं। इसलिए जब भगवान ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहेतु की कृपा से ही लक्ष्मी जी उन्हें नहीं छोड़ती, तो हम ये समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होती है, उन पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण नहीं। भगवान अपने ऐश्वर्य के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं है, वह सदैव आत्मा राम है। भगवान का यह कथन है कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के आशीष के कारण है। अन्य लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि वे ब्राह्मण तथा वैष्णवों का आदर करें जो भगवान के ही भक्त होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदामयं ददाति स्वब्दकान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के ये तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय का शीर्षक है वैकुंठ के दो द्वारपाल जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। तो इसकी संक्षिप्त में कथा प्रारंभ करने से पहले श्रीमद् भागवतम महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके बारे में एक कथा श्रवण कर सकते हैं। स्कंद पुराण के अंदर वर्णन है कि एक बार एक व्यक्ति उन्होंने श्रीमद् भागवतम कक्षा को त्याग करके तीर्थों में जाना स्वीकार किया। अभी होता है ना जैसे श्रीमद् भागवत क्लास में जाए या फिर हरिद्वार चले जाए, सोना यात्रा जा रही है, या चले जाए काशी घूम कर आ जाए थोड़ा सा, और भागवत क्लास वो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, यात्रा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे एक व्यक्ति थे जो कि भागवतम को छोड़ करके, भागवत कक्षा को छोड़ करके और तीर्थ यात्राओं के लिए निकल पड़े। उनको किसी ने कहा आप एक घंटे बाद चले जाना, कहा नहीं नहीं मेरे पास समय कम है, मुझे जल्दी जल्दी तीर्थ कवर करने, सारे निकल गए। चलते चलते बताते हैं कि वो काशी विश्वनाथ है ना, तो काशी पहुंच गए। काशी पहुंचे तो वहां पर गंगा स्नान करने का महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो गंगा स्नान करने के लिए जैसे ही उन्होंने देखा तो सामने देखते हैं कि बिल्कुल सूखी पड़ी है गंगा, वहां पर पानी नहीं है, तो उनको दर्शन ही नहीं हो रहा गंगा जी का। तो बड़े ही उनको अंदर से वेदना उत्पन्न होने लगी कि इतनी दूर ट्रेवल करके आया, चल करके यात्रा करके आया हूं, परंतु यहाँ पर क्या है, स्नान करने के लिए गंगा जी नहीं है। गंगा जी में लोग जाते हैं पापों से निवृत्त होने के लिए। तो बोले कि पाप निवृत्ति कर लूंगा और मैं वहां जाकर, लेकिन गंगा जी नहीं है वहां पर, तो पानी ही लुप्त हो गया। जैसे आजकल दिल्ली में भी मोटर लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ पानी की शॉर्टेज होती जा रही है ना, तो पानी लुप्त हो गया। उन्हें लगा इतनी शॉर्टेज हो गई कि पानी लुप्त हो गया। तो उन्होंने कहा किसी व्यक्ति से कि यहाँ पे गंगा जी कहाँ चली गई है, कहाँ गई, एकदम भरा हुआ पानी बह रहा है, एकदम पूरा ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है, मजे से डुबकी मार के खूब स्नान करो, किसने मना किया है। घर कहाँ पानी देख रहे हैं, सामने से लोग गीले गीले वस्त्रों में बाहर आ रहे हैं और ये जाने के लिए सामने देख रहे हैं कि पानी नहीं है, ड्राई है पूरा। तो अब समझ में नहीं आया, तो किसी से पूछा कैसे इसका उत्तर मिलेगा मुझे कि मुझे दिखता क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा यहाँ पर एक बहुत ही महान आत्म साक्षात्कार महात्मा रहते हैं जो कि परम वैष्णव है, और हमने सुना ऐसा कि वो श्रीमद् भागवत का रोज अध्ययन करते हैं, रोज एक घंटा, एवरीडे रीडिंग और हियरिंग, रोज श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। और हमने ऐसा सुना है कि गंगा जी पर्सोनिफाइड, मतलब पर्सन मीन्स गंगा जी एक व्यक्ति का स्वरूप लेकर के रोज उनके पास में जाती हैं और उनकी सेवा करती हैं। भाई भागवत शिक्षा के लिए लगाना है, सीट लगानी है, भागवत खोल कर रखनी है, प्रसंग निकालना है, कौन सा अध्याय कौन सा श्लोक, ऐसी सेवा गंगा जी करती है। अच्छा तो मैं गंगा जी से ही प्रश्न पूछूंगा, और उनका स्थान ढूंढ करके वहां पहुंच गए। और गंगा जी के पास जाकर के उन्होंने ये आग्रह किया कि गंगा जी आप मुझसे लुप्त क्यों हो गई हैं। तो और उस व्यक्ति से पूछा आत्म साक्षात्कार महात्मा से कि महात्मा जी एक बात बताइए, ऐसा क्या कारण है कि मुझे गंगा अदृश्य हो गई है और आपको गंगा सेवा करती है, तो ऐसी क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जो हूं ना बड़ा ही विषयी व्यक्ति था, और मुझे बिल्कुल भी है ना भागवत भगवान इसके प्रति कोई रुचि नहीं थी, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में आज क्या है, सब भागवत कक्षाओं में बैठते हैं, है ना, ऑनलाइन देखते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी इतने सारी कक्षाएं आप किसी भी सीनियर डिवोटी को जाकर के सुन सकते हैं, किसी भी महाराज को जाकर सुन सकते हैं। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति भागवत कक्षा सुनते हैं, चाहे सामने से, चाहे ऑनलाइन, चाहे हियरिंग से, कैसे भी। तो श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा हुई सबके ऊपर। तो वो बोला कि मेरे जीवन में कोई कृपा नहीं थी, मैं क्या करता था, विषयी व्यक्ति था, लेकिन मेरे पिताजी ने अपने शरीर को त्यागने से पहले मुझको एक विशेष कार्य दिया, कहा कि ये भागवत मैं रोज पढ़ता हूं, बेटा तुमने इसको भागवत को तो स्वीकार नहीं किया, तो श्रीमद् भागवत को क्या करना, रोज इसको मस्तक पे लगा के कुछ पुष्प चढ़ा देना इसके ऊपर, इतने कर लेना बस। तो मैंने सिर्फ इतना करना शुरू किया और एक दिन गंगा जी निकल कर मुझे प्रणाम कर दी, बोले कि आप तो महान भागवत है। कह रहे क्यों, क्योंकि जो भागवत की अर्चना वंदना करता है वो व्यक्ति तो तीर्थ उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। अच्छा, और उस दिन से फिर मैंने निर्णय लिया कि अब मैं इस भागवत का अध्ययन करूंगा, और भागवत पढ़ने से क्या हुआ, अब मैं आत्म साक्षात्कार करता जा रहा हूं कि मैं हूं कौन, शरीर हूं कि आत्मा हूं, है ना। ये आत्म साक्षात्कार की मेरी क्रिया शुरू हुई जब मेरा ये भ्रम टूटा कि तीर्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत, है ना, और श्रीमद् भागवत भी पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत के प्रसंगों के द्वारा अपने जीवन को चलाना। तो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे विशेष भक्त होते हैं जैसे हमारे सीनियर भक्त हैं सब। तो प्रभु जी लोग अपने जीवन को चलाते हैं भागवत के अनुसार, लेकिन हम लोग कैसे हैं, है ना, भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, इससे अभी शुद्धिकरण होने में कई वर्ष लगेंगे, हो सकता है कई जन्म भी लग जाए, लेकिन सही मायने में भागवत के द्वारा अपने जीवन को चलाना जो है वही महत्वपूर्ण बताया। वो व्यक्ति समझ गया और उस दिन से उनका शिष्य बन गया, और फिर उसने भी क्या किया, श्रीमद् भागवत को महत्वपूर्ण समझा। तो स्कंद पुराण वर्णन करता है कि श्रीमद् भागवत इतना महत्वपूर्ण है, कक्षा इसको सुनना, चाहे कैसे भी सुने, ऑडियो वीडियो लाइव, लेकिन सुनना जरूरी है। श्रीमद् भागवत की कक्षा किसी भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस व्यक्ति के चरणों में 33 जितने भी तीर्थ बताए गए हैं, वो सारे करोड़ कोटि कोटि तीर्थ प्रणाम करते हैं उस व्यक्ति को। तो श्रील प्रभुपाद जी से लोग पूछते थे कि फिर हम तीर्थों में क्यों जाते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम तीर्थों में अपने शुद्धि के लिए नहीं जाते, हमारी शुद्धि तो हरिनाम लेने और भागवत अध्ययन से हो जाती है, हम तीर्थों में जाते हैं प्रचार के लिए। वहां पर जो लोग घूम रहे हैं और जो सोचते हैं तीर्थ ही महान है, उनको हम प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं, टीचिंग देने के लिए जाते हैं। जो लोग हिमालय पर चले जाते हैं योगी बनकर, और कुंभ मेला आदि प्रोग्रामों में उतर उतर के आते हैं अपने अपने अखाड़े बनाकर और कूद जाते हैं पूरे, कोई अर्ध नग्न है, कोई पूर्ण नग्न है, कोई भस्म लगाए हैं, वो लोगों को मालूम ही नहीं है भगवान कौन है। तो अपनी अपनी मनोधारणा से वो व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं हठ योग, उनको प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो ये भागवत की महत्वपूर्णता प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा प्रचार ही सार है, कि भागवत पढ़ो भी और दुनिया को बताओ भी। तो ऐसे एक डिवोटी थे प्रभुपाद जी के जिनका नाम ही था भागवत दास, है ना, उनका नाम ही रखा भागवत दास। तो भागवत दास को एक दिन बुलाए श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में और बोले, भागवत दास आप रोज भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, गीता अध्ययन कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि हाँ प्रभुपाद जी बिल्कुल करता हूं मैं। कहा कि ठीक है, तो बताओ कि कल कौन सा वर्ष आपने पढ़ा। तो प्रभुपाद 2.1 भगवत गीता पढ़ा था मैंने, फर्स्ट चैप्टर 48 श्लोक। हाँ प्रभुपाद जी 48 श्लोक भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर, कितने श्लोक है, हैं भगवत गीता में कितने श्लोक है फर्स्ट चैप्टर में, कितने श्लोक है, 46। वो क्या बोल रहे थे, मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ, 48। तो इसका मतलब प्रभुपाद जी बोले आपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा है। प्रभुपाद जी का ठीक है कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। उन्होंने संस्कृत श्लोक पढ़ा और भागवत जिनका नाम ही है भागवत दास, भागवत की सेवा करने का, कहा भागवत दास ये बताओ ये पहले स्कंद के इस प्रसंग का क्या अर्थ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। सॉरी प्रभुपाद, काफी दिनों से मैंने ना भागवत पढ़ा है ना गीता पढ़ा है, आपके चरणों में स्वीकार करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप जानते हो कि रोज मैं अपने खुद के लिखे हुए ग्रंथ पढ़ता हूँ, खुद के लिखे हुए ग्रंथ प्रभुपाद जी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो उनसे भागवत दास ने पूछा कि प्रभुपाद आप क्यों पढ़ते हैं, आप तो रचयिता है। प्रभुपाद जी ने कहा आप गलत सोच है कि मैं रचयिता हूं। और भागवत दास वर्णन करते हैं कि ये बताते बताते श्रील प्रभुपाद का गला अवरुद्ध हो गया, नेत्र अश्रुपूरित हो गए, और श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करने लगे कि मैंने नहीं लिखा है ग्रंथ, यहां पर कृष्ण खड़े होते हैं और मुझको बोलते हैं कि ये लिखो, तो मैं उनको सिर्फ क्या करता हूं, ट्रांसक्राइब करता हूं, है ना। तो ये सारे ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? कृष्ण के द्वारा लिखे गए, कृष्ण की वाणी है। इसमें मेरे तात्पर्यों में मेरी कोई मनोधारणा नहीं है। बाकी जगह हम देखते हैं जितने भी लोगों ने पर्पट्स लिखे हैं वो अपनी मनोधारणा मेंटल स्पेकुलेशन से लिखते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने साफ साफ बताया कि कृष्ण बोलते हैं और मैं लिखता हूं, है ना। मैंने अपनी कोई मनोधारणा से नहीं लिखा। तो ये भागवत की विशेषता कृष्ण भगवान के द्वारा बताई गई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी जब रोज पढ़ता हूं, रोज नए अनुभव करता हूं, वही प्रसंग रोज नए अनुभव कराता है। और वो कितनी बार हम जन्माष्टमी में कृष्ण का जन्म सुन चुके हैं, कितनी बार नरसिंह चतुर्दशी में प्रहलाद महाराज का प्रसंग सुनते हैं, पर हर साल हर बार जितनी बार सुनेंगे उसकी एक नई अनुभूति होती है। ये भागवत की श्रेष्ठता है, है ना। समुद्र में कितनी बार भी जाएंगे कुछ नया नया अनुभव होगा। ऐसे ही ये गहरा समुद्र के अनुरूप से भी ज्यादा कई महाअथा सागर है। तो ये भागवत की श्रेष्ठता है श्रीमद् भागवत को। ऐसे श्रीमद् भागवत को हमें प्रणाम करना चाहिए और ध्यान पूर्वक इसका श्रवण और अध्ययन करने का प्रयास तो कर सकते हैं कम से कम। तो हम आज जिस प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं, वैकुंठ में दो द्वारपाल जय विजय का मुनियों द्वारा शापित होना, तो उसमें बताते हैं कि दो सनत कुमार, चार सनत कुमार जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, सनत कुमार सनक आदि कुमार घूमते घूमते वैकुंठों से, और वो सात वैकुंठ के द्वार पार करके अंतिम द्वार में भगवान से विष्णु से मिलना चाह रहे थे, है ना। तो कई लोग आते हैं, भागवत कक्षा चल रही हो, जपा चल रहा हो, वो बाहर के भौतिक संसार के लोग आएंगे और बड़े ज्ञानी होंगे, तिलक विलक भी लगा होगा लाल रंग का पीले रंग का, और सीधा भगवान के अल्टर में, मेरे तो बस गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, बस ये गिरधर गोपाल है मेरे तो दूसरा ना कोई, है ना। बोले जी भागवत नहीं, भागवत नहीं, भक्त भक्त भी नहीं, गुरु गुरु भी नहीं, बस मेरे तो गिरधर गोपाल है ना, हमारे तो भगवान जी है बस। और हाथ में भगवान को लेके चलते, भगवान के साथ में सोते भी है, स्लीपिंग बेड में भी रख लेते हैं भगवान को, वो भगवान को एक मूर्ति के समान ही ट्रीट करते हैं और ऑफेंसेस अपराध करते हैं। तो इस तरह से वो सनत कुमार भी बड़े ज्ञानी थे लेकिन भक्त नहीं थे, और उनके पास इतने ज्ञान की सिद्धि थी कि अपने शरीर को 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने पूर्ण बना रखा था कि 5 साल से कभी ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, जबकि कई वर्ष बीत चुके हैं उनको तपस्या करते करते, योग सिद्धि करते करते। और वो पहुंच गए वैकुंठ के द्वार पे, जय विजय ने रोक दिया, कहा भगवान के अभी जाने का ये रास्ता नहीं है, रुक जाइए, अपनी आइडेंटिटी बताइए, आप भक्त हैं नहीं, क्योंकि वैकुंठ में सिर्फ भक्त ही जा सकते हैं, हर एक व्यक्ति की एंट्री नहीं है। तो जब इस तरह से चर्चा हुई, हो वर्णन करते हैं भागवत में कि ये लीला भगवान की इच्छा से ही हुई, परंतु हमें शिक्षाएं प्रदान करने के लिए है। तो सनत कुमारों ने श्रापित कर दिया जय विजय को कि आप क्या बनेंगे, 3 बार आपको क्या बनना पड़ेगा, असुर। तो 3 बार नहीं कहा था ये, भगवान ने बाद में मॉडिफाई किया, भगवान ने अहेतु की कृपा करी, उन्होंने कहा आपको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, असुरी जैसा व्यवहार करते हो तो असुर बन जाओगे, है ना, असुर मतलब राक्षस बन जाओगे। तो जब भगवान ने ये चर्चा सुनी, भगवान की खुद की इच्छा थी, क्योंकि ऐसा कई वर्णन करते हैं, राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री पंचतत्व गौरताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान चाहते थे कि मैं बड़े दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया हूं, युद्ध नहीं किया हूं, तो चलो किसी के साथ युद्ध किया जाए। तो भगवान की युद्ध क्रीड़ा में शामिल होने के लिए भी किसकी आवश्यकता है, उनके जैसा शक्तिशाली उनका कोई भक्त हो, है ना। जो भक्त नहीं है वो भगवान को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, भगवान के महान भागवत को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए भी भगवान का भक्त बनना बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने कहा किसके साथ मैं लड़ाई करूं, जब भगवान कृष्ण लीला करने के लिए आते हैं तो बड़े बड़े मुष्टिक चाणूर, ऐसे बड़े बड़े राक्षस, कंस ने जिनको चुटकियों में हराने के लिए, जिन कंस ने जिसके लिए हराने के लिए बहुत बहुत ताकत लगाई, मेहनत करी, ऐसे महान महान पूतना वकासुर जैसे राक्षसों को भगवान ने चुटकी में मार दिया। तो भगवान को लंबी लड़ाई करने के लिए अपने ही भक्त की आवश्यकता है। तो जय और विजय को चाहते थे कि ये जाए पृथ्वी पे और फिर जब मैं लीला करने आऊं तो मेरी लीलाओं में सहयोग करें। तो जब उन्होंने श्रापित किया तो भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर के सामने आए, और जब आए भगवान तो जो सनत कुमार थे वो भक्त नहीं थे, लेकिन जब भगवान के दर्शन किए तब भी भक्त नहीं बने, लेकिन भगवान जब धीरे धीरे गरुण से नीचे आ रहे हैं तो उनके चरणों पर भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए तुलसी आदि के पत्र थे, और तुलसी की जो मकरंद थी, खुशबू थी, उस खुशबू से जब उनके नाक में, क्योंकि हवा का स्वभाव है नीचे से ऊपर की तरफ जाना,
तो जब वो हवा नीचे से उनके नाक के छिद्रों से अंदर गई तो नौ द्वारों में से एक द्वार उनका पवित्र हो गया और एक द्वार में तुलसी की सुगंध जाने मात्र से वो क्या बन गए, भक्त बन गए। और प्रणाम करने लगा, हमसे ऑफेंस हो गया, गलती हो गई हमसे, है ना, हमने श्राप दिया, ये गलत हो गया। भक्त को टॉलरेंट होना चाहिए ना, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो भक्त होते हैं उनमें तो उनके अंदर टॉलरेंस होता, और जिसमें भक्त का पहनावा है लेकिन टॉलरेंस नहीं है, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सही मायने में वो व्यक्ति अभी क्रियाओं में लगा हुआ है लेकिन भक्त नहीं कहला सकता। क्योंकि भक्त वही है जो व्यक्ति सहनशील हो और जो व्यक्ति कैसा हो, विनम्र हो। तो अभी पीछे हिज होलीनेस भक्ति ब्रद भागवत स्वामी महाराज एक कक्षा ले रहे थे, तो सेमिनार ले रहे थे वैष्णव एटिकेट पे, तो सात दिन तक वो सिर्फ एक ही चीज पे वर्णन किए, टॉलरेंस, सहनशीलता पे। तो बोले वैष्णव एटिकेट का मतलब ही है सहनशीलता, और कोई वैष्णव एटिकेट, वैष्णव एटिकेट हम सोचते हैं प्रणाम करना, तिलक लगाना, उन्होंने कहा ये पेरिफेरलियाज है, मेन है चैंटिंग करना और विनम्र होना, सहनशील होना। जिसने ये चीजें धारण की वो वैष्णव एटिकेट का पालन कर रहा है, सही माना, वरना वो वैष्णव ऑफेंसेस ही करता है अगर वो टॉलरेंट नहीं है। तो उन्होंने परिभाषा बताई टॉलरेंस की, तो एकदम ब्लास्ट कर देने वाली परिभाषा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब आपसे कुछ कहता है बुरा भला, तो आपको गुस्सा आता है और आप उससे बुरा भला बोलते हैं, तो ये समान व्यवहार है, इसमें सहनशीलता नहीं है। किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने उससे कुछ कहा, उसने मुझे कुछ कहा, मैंने उससे कुछ कहा, ये समान व्यवहार है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा और मैंने कुछ नहीं कहा, तो ये सहनशीलता है ना, सहनशीलता है कि नहीं है, है कि नहीं सहनशीलता। लेकिन उन्होंने कहा ये शुरुआत की सहनशीलता है, 0%, मतलब 1% पे शुरुआत, कि उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन मेरे मन ने बहुत कुछ कहा, इतना गंदा व्यक्ति है, इसने मुझसे ऐसे बिहेव किया, इसका मन करता है मतलब मेरे जीवन में कहां से ये प्रकट हो गया, इसके मन में चल रहा है, बोल नहीं रहा कुछ, सहनशील है। प्रभु जी उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, तो ये व्यक्ति बड़ा सहनशील है। अरे प्रभु जी आपके क्या कहने, वो आपको ऐसे बोल रहे थे, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन से पूछो मैंने क्या क्या कहा। क्योंकि मन के द्वारा अपराध नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा ठीक है मन में सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं, ये सहनशीलता नहीं है। कहा फिर क्या सहनशीलता है, कहा कि मन में भी जो ना सोचे कहे कोई बात नहीं, मेरे पूर्व जन्मों के कुछ अपराध होंगे, कट गए, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, ये विनम्रता है, सहनशीलता है। उन्होंने मुझे कुछ कहा और मैंने ये बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे कर्मा काट दिए ना, अरे मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए। और उसमें एनोलॉजी भी यूज करते हैं हम भक्त, कि मान लो कोई हमारे कूड़ा रखा हो हमारे घर के बाहर और उस कूड़े को उठाकर फेंक दे, मतलब हमारे गंदा गुस्सा उसको उठाकर कोई फेंक दे, तो हम उसको धन्यवाद देंगे। तो ऐसे हमारे पाप पूर्ण कर्मों के कारण कोई हम पर अपराध का व्यवहार करता है, गलदा बोलता है या हमसे हमें पिताड़ित करता है, ऐसे व्यक्ति को हमें धन्यवाद देना चाहिए, उसने हमारे पापों का कूड़े का करकट को उठाकर फेंक दिया, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो ये सहनशीलता है। तो महाराज बोले दिस इज 50% सहनशीलता, ये 50% है। बाप रे, कौन सी 100% है महाराज? महाराज ने बोला कि असली टॉलरेंस क्या है, पका हुआ आम क्या है, जो बहुत ही मुश्किल है पहुंचना। उन्होंने कहा सहनशीलता वो है जो व्यक्ति को अगर कोई कुछ बोले तो उसके दंडवत करके चरणों में गिर जाए और बोले कि है ना, मैंने ऐसा क्या कार्य किया जिससे प्रभु जी आज आपको इतना क्रोधित होना पड़ा, है ना, और मन में ये सोचे कि मैं कितना पतित हूं और ये सारे के सारे लोग बैठकर जो है ना, मैं इतना गंदी भाषा है मेरी, मैं ढंग से प्रणाम नहीं कर सकता और ये सब मुझे सहन करते हैं। भक्त को क्या लगता है, मैं इतना अच्छा हूं और ये सब को मैं सहन करता हूं। जिस दिन ये परिवर्तन हो जाए कि मैं इतना पतित हूं ये सब मुझे सहन करते हैं, तो उस दिन उसकी सहनशीलता है। तो फिर प्रश्न उठा कि ये छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त हो तब डिफरेंस, सीनियर जूनियर? उन्होंने कहा देयर इज नो सीनियरिटी जूनियरिटी, डिवोटी इज डिवोटी। एक आम पेड़ पर लगा है, चाहे वो नया हो सकता है थोड़ा कच्चा हो और एक पका हो, लेकिन आम आम ही है, डिवोटी इज डिवोटी। तो डिवोटी के प्रति कोई भी हो, नया भी हो, अगर वो इस तरह व्यवहार करे, उसके भी दंडवत करके मन में ये सोचे कि मैंने कुछ किया होगा इसलिए ऐसे कर रहा है, तो उससे क्षमा याचना, ये सहनशीलता है। तो इसे प्राप्त करना असंभव जैसे ही सुनाई देता है, लेकिन जो भक्त भागवत की शरण ग्रहण करते हैं, जप आदि नियमों को, वैष्णव एटिकेट को पालन करते हैं, वो इस स्थिति में पहुंच सकते हैं। बताते हैं कि जब भगवान वहां आए और भगवान ने आकर के उसको मॉडिफाई किया, भक्त तो बना दिया उनको, कहा कि ठीक है तो सनत कुमार बोलने लगे हमसे अपराध हो गया भगवान, अब आप कुछ करिए, अहत की कृपा करिए, हमने तो श्राप दे दिया। अब भगवान ने कहा अगर श्राप दे दिया कैंसिल किया तो ब्राह्मण झूठे पड़ जाएंगे, ये सनत कुमार ब्राह्मण है इतने विशेष है ये झूठे पड़ जाएंगे। और मैं कहता हूं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणों का हितैषी हूं और गायों का हितैषी हूं, तो ब्राह्मण झूठे पड़ जाएंगे। कहा फिर क्या करें, बोले मैं इसको मॉडिफाई करता हूं, आप जाइए पर सिर्फ तीन बार आप जाएंगे और तीनों बार में मैं आपको लीला में अपने साथ ले यूज करके वापस ले आऊंगा अपने धाम में। अच्छा ठीक है। तो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र बनकर के जय और विजय आए। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि हर बार रावण और कुंभकर्ण जो है वो जय विजय नहीं होते, वो सिर्फ तीन ही बार आए। जितनी बार भी युग पर्यंत चलते रहते हैं तो रावण कुंभकर्ण कई बार असुर भी होते हैं, और जिन असुरों की रावण दहन करते हैं दशहरे पे, या हम कंस वध सुनते हैं या फिर शिशुपाल वध सुनते हैं, तो हर बार वो जय विजय नहीं होते हैं, वो सिर्फ तीन ही बार आ रहा है ऐसा वर्णन आता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कई बार असुर भी रावण असुर भी होते हैं, तो सही मायने में ये नहीं कि रावण भक्त है क्योंकि वो जय विजय, हर बार जय विजय नहीं है, ऐसा आदि लीला में चैतन्य चरितामृत में वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो भगवान को आना पड़ा वहां पर, क्यों आना पड़ा, और क्षमा भी मांगनी पड़ी, मेरे द्वारपालों से क्या हो गया गलती हो गई है, आप लोग इन्हें माफ कर दीजिए। तो भगवान को क्यों माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार गुरु अपने शिष्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रभुपाद जी ने इस कौन बनाया, हमको भक्त बनाया, हमने उनके ग्रंथ पढ़कर भक्त बने, अब हम जाकर कहीं मिसबिहेव करें, बहुत बुरा बर्ताव करें, ऐसे वैष्णव एटिकेट का पालन ना करें, सहनशीलता और विनम्रता का हम सामने प्रदर्शन ना करें, या उसको हम अपने जीवन में ना अपनाएं, तो लोग क्या कहेंगे, किसको गलत बताएंगे, प्रभुपाद जी को, शिष्य के कारण गुरु। अब वो जानते नहीं गुरु कौन, गुरु के बाद में परंपरा कौन, वो कोई नहीं जानते, बाहर के लोगों के लिए इस्कॉन मतलब आप, और आपका बुरा व्यवहार मतलब इस्कॉन खराब। तो इसीलिए प्रचार के वक्त बहुत ही ज्यादा समझदार होना चाहिए, है ना। नए नए भक्त थोड़ा कथा सुनते वो प्रचार में जाते हैं, और प्रचार में जाते वक्त वो सोचते हैं हम भी वैसे ही प्रचार कर सकते हैं जैसे हमारे सीनियर भक्त कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह कर सकते हैं, उनको पता है कहाँ दबाना है, कहाँ इनको उकसाना है, कहाँ कौन सा प्रश्न रखना है, लेकिन एक नया भक्त जाता है वो गुस्से में आ जाता है, अरे आप कृष्ण को भगवान नहीं मानते, आप कैसे, आप नरक में, गुस्से में आ जाता है वो। तो उसको दो तीन भक्तों के साथ ही में प्रचार में जाना चाहिए, पता चला वो एकदम हतोत्साहित होकर के पूरा इस्कॉन का ही खराब कर दिया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रभुपाद जी बन जाते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है, और इस्कॉन के प्रति कोई खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब श्रील प्रभुपाद जी के शरीर के ऊपर हम कटाक्ष करवाते हैं। अगर भगवान के भक्त हैं और भक्त कुछ गड़बड़ करें और वो प्रभुपाद जी को नहीं जानता, वो जानता है ये तो इस्कॉन वाले हैं कृष्ण वाले हैं, और वो प्रभुपाद जी को नहीं जानता, तो किसको दोषी ठहराएगा, भगवान को। कृष्ण भगवान के भक्त देखे हैं हमने, वो ऐसे होते हैं। तो इसका मतलब जिस तरह माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे, बच्चा जाकर के गार्डन में गेंद फेंक कर किसी का शीशा फोड़ दे तो कौन पकड़ा जाएगा, माँ बाप पकड़े जाएंगे। तो इसी तरह से यहां पर जय विजय की गलती के कारण भगवान को माफी मांगनी पड़ रही है, जबकि जय विजय जो है वैकुंठ के खाली द्वारपाल है, लेकिन वैकुंठ में जाने के लिए वैकुंठ गुण होने चाहिए, वैकुंठ के गुण होंगे तभी तो द्वारपाल की सेवा में आ पाए, और इतने महान भक्त वो उनके लिए भगवान को आना पड़ेगा क्योंकि उनको गलती हो गई, उन्होंने रोक दिया, है ना। तो इस तरह से छोटी से ऑफेंस से भी भगवान को अपराधी महसूस करना पड़ता है, हमारी हर एक गलती के लिए भगवान प्रभुपाद गुरु ये सभी लोगों को सुनना पड़ता है, और हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भक्त बनना, सोलह माला करना और नियम पालन करना, अपने कार्यक्रमों को दृढ़ता से पालन करना। अगर हम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम अपराधी किसके बन जाएंगे, गुरु प्रभुपाद कृष्ण के। तो इस तरह से वर्णन इसके अंदर कहा गया है। कुमार मुनियों ने कहा आत्म अध्यात्मवादी आपको जान पाते हैं तो आपकी कृपा से। कुमार मुनियों ने फिर वर्णन किया कि अध्यात्म में जो लोग लगे हैं वो भी भगवान को तभी जान सकते हैं जब भगवान की कृपा हो, भगवान की कृपा के बिना भगवान को जानना मुश्किल है। तो भागवतम के इसी अध्याय के 19वें श्लोक में बोलते हैं तरंति ही अज्ञसा मृत्युम निवर्ता यत अनुग्रहात्। भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं, भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा तो उसी पे होगी जो भगवान के आदेश का पालन करेगा। गीता को मानते हो? हाँ जी मानते हैं। कृष्ण को मानते हो? हाँ जी मानते हैं। भगवान कहते हैं वैष्णवों से द्वेष नहीं करना चाहिए, भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, वो कर देते हैं प्रभु जी, मन हमारा चंचल है। तो फिर अगर भगवान कृपा कैसे करेंगे? कृपा करने के लिए पूर्ण रूपेण भगवान की बात माननी पड़ेगी। एक बच्चा है वो अपने पिता माता की बात नहीं मानता, कहता है मेरे माँ बाप है लेकिन बात नहीं मानता। बात मानने का मतलब इंस्ट्रक्शन मैनुअल भगवत गीता श्रीमद भागवत के अनुसार जीवन को चलाना, वरना हम फंस जाएंगे इसी संसार में, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ऐसी घूमेंगे, शुद्धि होती रहेगी लेकिन भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। जिस प्रकार से इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती है, तो एक लक्ष्मी नहीं है। एक लक्ष्मी को दिवाली पे बुलाने के लिए लोग कितनी पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश पूजन, ये पूजन, वो पूजन, और ऐसी सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है, है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कहा गया है ब्रह्म संहिता में, कहा गया है भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सदैव सेवित होते हैं। तो कौन सा श्लोक है जहां पे बताया गया? हाँ, चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र सत सम्भ्रसेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो लक्ष्मी सहस्त्र सम्भ्रम, भगवत सहस्त्र लाखों, तो सहस्त्र का मतलब थाउजेंड है, कई बार सहस्त्र का मतलब करोड़ों भी होता है, कोटि भी होता है। सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में, लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में, है ना। तो इस तरह से, लेकिन लक्ष्मी जी के ऊपर भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जैसे भी ज्यादा बेटर कौन है? तुलसी। तुलसी को भगवान कह रहे हैं ये महान है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति जो ऑपुलेंट है, ऐश्वर्यशाली है, और एक व्यक्ति जो कि भक्त है, उसको भगवान ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं बजाय उसके जो एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्यशाली, बड़ी ऐश्वर्य में पूजा करता है। हमारे घर में ना जी सोने के भगवान है राधा कृष्ण, रोज सुबह अभिषेक होता है। हमारे यहाँ तो कभी कभी होता है, इतना फंड नहीं आता मंदिर में, रोज नहीं होता। हमारे यहाँ तो रोज होता है जी, पैसे की कोई कमी नहीं है भगवान की कृपा से। तो क्या कृपा है? तो भगवान तो कृपा उस पे करते हैं जो भक्त है। तो इसी प्रकार की कथा वर्णन है, जैसे इसमें श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान वो है जिनके अंदर छह ऐश्वर्य है, और वो भी असीम मात्रा में। विष्णु पुराण में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रीह ज्ञान वैराग्यश्च एव क्षणम् इति गणा। जिसके अंदर ये छह ऐश्वर्य हैं वो सही मायने में भगवान कहलाता है। विष्णु पुराण कहते हैं भग मतलब छह ऐश्वर्य, यश हो, सुंदरता हो, शक्ति हो। तो इसके बारे में सभी भक्त जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान के अंदर हर चीज असीम मात्रा में। अंबानी जी ने अपना घर बनाया, मुकेश अंबानी ने, पता कितने करोड़ का है? है? अभी ज्यादा है प्रभु जी, 6,700 करोड़ का एंटीला टावर बॉम्बे में उनका, और विश्व की दूसरी इमारत, पहली है बर्मिंघम पैलेस, दूसरे नंबर पे अंबानी जी जाते हैं। सोचिए आप, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या वो ये बोल सकते हैं इस संसार का सारा पैसा मेरा है? वो तो भगवान ही कह सकते, क्योंकि लाखों लक्ष्मियां, जिस एक लक्ष्मी की कृपा से वो पैसे वाले बन गए हैं, ऐसी लाखों लक्ष्मियां भगवान की दासी हैं, है ना। तो एक भक्त ने सवाल पूछा कि लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में रहती है और मुक्ति कहां रहती है, क्योंकि भागवत में मुक्ति का भी वर्णन है, लिबरेशन, मुक्ति कहां रहती है? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रचार करके भक्त बनाते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रश्न पूछते हैं और वो श्लोक का उच्चारण बदल देते हैं, मुक्ति पद की जगह भक्ति पद का उच्चारण करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रश्न पूछते हैं उनसे चैतन्य महाप्रभु कि आपने मुक्ति पद को भक्ति पद में क्यों परिवर्तित कर दिया? तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं क्योंकि मुक्ति के पीछे तो मैं पड़ा था सोच करके, ब्रह्मवादी होकर के, मुक्ति, लिबरेशन पाना, संसार में मुक्ति पाना सबसे बड़ा, सबसे अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। जो माला देखते हैं ना भौतिक संसार के लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा मोक्ष के रास्ते पे हो आप, तो उन्हें लगता है मोक्ष ही परम रास्ता है, तो इसलिए मैंने मुक्ति पद को भक्ति पद में परिवर्तित कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को जब उन्होंने कहा, तो चैतन्य महाप्रभु से फिर महाप्रभु ने प्रश्न पूछा कि क्यों मुक्ति क्या भक्ति पद नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो आपने मुझे इतनी प्रीचिंग करी और पूरा परिवर्तन कर दिया, मेरा हृदय पूरा पिघल चुका है और मैं आपका भक्त बन गया हूं, अब तो मैं बिना ब्रश किए महाप्रसाद पा लेता हूं, क्योंकि मुझे महाप्रसाद की महिमा मालूम पड़ गई है। और महाप्रभु ने चेक भी किया, जगन्नाथ पुरी से महाप्रसाद लेकर के और सार्वम भट्टाचार्य को परिवर्तित करने के बाद उनके सुबह सुबह घर पर पहुंच गए देखने के लिए कि कल मैंने इसको अपना रूप परिवर्तन दिखाया है कि मैं भगवान हूं, क्या ये इस बात पे अभी समझ पाया है या फिर खाली ऊपर ऊपर से बोल रहा है। तो महाप्रसाद लेकर के सुबह 5 बजे उनको उठा दिए और 5 बजे जब वो सोकर उठे और घर को गोला, बोले इतनी रात को लेट नाइट तो सेमिनार समाप्त हुआ था DYS हु इज गॉड और पता है कि चेतन महाप्रभु भगवान है, लेकिन अब ये सुबह सुबह कौन आ गया। तो सोते वो मंगला आरती मिस कर दिए थे और सुबह सुबह उठे, क्योंकि भाई सेमिनार होता है तो भक्त कहते हैं मंगला आरती मिस कर सकते हैं लेकिन चेतन महाप्रभु मिस नहीं किए। प्रीचिंग करने के बाद महाप्रभु भक्त का दर्शन दिखा रहे हैं कि वो पहुंच जाते हैं कहां पर, मंगला आरती दर्शन जगन्नाथपुरी, और दर्शन करने के बाद वहां का महाप्रसाद लेकर सार्वम भट्टाचार्य के घर जाके कहते हैं खोलो गेट, खोलो गेट, खोलते हैं कहते हैं ये महाप्रसाद कहां। अगर ये ऊपर से परिवर्तित हुआ होगा तो अभी प्रसाद की महत्वता को नहीं जानता होगा, और बेचारा ऐसे गंदा बिना ब्रश के, और उसने कोई ना कुल्ला किया है ना कुछ किया है, और गेट खोला आंखें मिच करके देखा, अरे भगवान, दंडवत प्रणाम किया, भगवान बोले ये प्रसाद लाया हूं जगन्नाथपुरी का। तो बिना सोचे समझे उनके उसमें हाथ डाल के बिना ब्रश के मुंह में जगन्नाथ महाप्रसाद, अरे स्वयं भगवान दे रहे हैं प्रसाद। तो भगवान ने उनको गले लगाया, कहा कि हाँ सही मायने में आप पूर्ण रूपेण भक्त बन चुके हो, चेक टेस्ट ओके हो गया, टेस्टेड ओके। तो इस तरह से भक्त के प्रसाद की, भगवान के प्रसाद की, भगवान के तुलसी की अधिक महिमा है। भक्त को माला मिले ना मिले, भक्त को कुछ मिले ना मिले, भगवान के चरण की तुलसी मिल जाए उसे लगता है आज का दिन पूर्ण हो गया मेरा, है ना। इसलिए भक्त आकर के भगवान की तुलसी मांगते हैं। ऐसा ही एक कथा आती है और उसमें वर्णन है कांचीपुरम की कथा। उसमें बताते हैं पुराणों में कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा चोल, है ना, आपने सुनी होगी कई बार, परंतु प्रसंग के अनुसार हमें सुनानी चाहिए। तो राजा चोल और एक भक्त हुए जिनका नाम था विष्णुदास। राजा चोल बहुत बड़े राजा थे जिनके कारण चोला डायनेस्टी कहलाती है। तो राजा चोल भगवान अनंत पद्मनाभ, सुना है ना, साउथ इंडिया में कौन सी जगह, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में भगवान की सेवा के लिए जाया करते थे। तो उन्होंने भगवान जहां पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे उस स्थान पर जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए काफी धन का उपयोग करते थे। तो यहां पर वर्णन है लक्ष्मी जी और तुलसी कंपैरिजन पर्पट में, तात्पर्य में, तो वही इस कथा में वर्णन है कि उन्होंने स्वर्ण के पुष्प बनाए थे। हम तो नॉर्मल माला लाते हैं, सोने के फूल आदि पुष्प बनाकर के भगवान को अर्पित कर रहे और पूरा सजा दिया भगवान को सोने से। और इतने में एक भक्त वहां पर आए, विष्णुदास ब्राह्मण, और आकर के भगवान के ऊपर तुलसी, जो नॉर्मल अपने तुलसी पत्र, जो तुलसी देवी है, उनको तोड़ा और उनको भगवान की सेवा में अर्पित किया। जब अर्पित किया तो पूरा उन्होंने भी खूब सारी तुलसी से भगवान को सजा दिया। आप जाएंगे साउथ इंडिया में तो क्या करते हैं, बहुत सारी तुलसी से भगवान को सजा देते हैं। जब सजा दिया तो उसको बहुत क्रोध आया, बोला कि अरे तुमने इतना सुंदर डेकोरेशन पूरा खराब कर दिया तुलसी से, ये हटाओ अपने फूल पत्ती यहां से, है ना, ये सोना आदि चढ़ा हुआ है यहाँ पर भगवान का और तुम ये कर रहे हो। तो उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, भगवान ने तो नहीं कहा सोना चढ़ाओ, भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने तो पत्ता कहा है कि कोई भी व्यक्ति कितने गरीब से गरीब भगवान की सेवा कर सकता है, और आप अपनी लक्ष्मी का मुझे वो दिखा रहे हैं। तो उसने कहा तुम ज्यादा भक्त बनते हो, चलो कॉम्पिटिशन हो जाए, चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं कौन भगवान को जल्दी साक्षात्कार दर्शन करा सकता है। तो विष्णुदास को उन्होंने कंपटीशन के लिए चैलेंज कर दिया। विष्णुदास बोले कि जैसी आपकी इच्छा राजा, आप कहते हैं मैं वैसे करूंगा। तो उन्होंने जाकर के, और राजा चोल ने अनुष्ठान यज्ञ शुरू कराया, और एक महर्षि थे महर्षि मुद्गल, उनको बोला कि आप रोज आहुति, शुद्ध घी, शुद्ध लकड़ी, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध उच्चारण से क्या करिए, अनुष्ठान करिए और भगवान को प्रकट करिए यहाँ पर साक्षात। उन्होंने अपना अनुष्ठान प्रारंभ किया, और इधर विष्णुदास के पास तो कुछ था नहीं, धन था ना कुछ, वो क्या चालू कर दिए, तुलसी अर्पित, अगरबत्ती और भगवान के नामों का उच्चारण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो इस तरह से उन्होंने अपना शुरू कर दिया, और इतना करते ही रोज संध्या में जब पूरा दिन पूजा पाठ उनका अध्ययन स्वाध्याय अर्चना वंदना में चला जाता था, तो भगवान को बस एक ही वक्त प्रसाद पाते थे, तो संध्या में भोग अर्पित करते थे और खुद ही कुकिंग करते थे, है ना, भक्त लोग खुद कुक करते हैं क्योंकि बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तो खुद कुक करते थे और फिर उनको अर्पित किया भगवान को, और आंख बंद करके जब मंत्र उच्चारण करने लगे भोग अर्पित करके, तो आंख खोलकर जब देखते हैं तो भोग गायब है। अब वो सोचते हैं कौन ले गया भोग, है ना, गायब हो गया भोग, प्रसाद ही नहीं मिला आज तो। कहा कि अब मैं प्रसाद बनाने दोबारा लगूं तो मेरी संध्या वंदन खराब हो जाएगा, तो छोड़ दो, कैंसिल, कल खाएंगे भूखे। दूसरा दिन आया, फिर पूरा दिन संध्या वंदन तक, पूरा दिन उच्चारण वंदना आत्मसमर्पण निवेदनम सब में चला गया उनका। लेकिन जब संध्या आई, प्रसाद कुक किया, फिर भोग लगाया, फिर गया। अब बोले ये आज फिर भूखा रह गया। कह जैसी भगवान आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा से अन्न मिलता, आपकी इच्छा से भूखे रहते। सात दिन निकल गए, रोज रोज ऐसा कार्य हुआ। तो एक दिन वो बोले आज तो अब बहुत ज्यादा हो गया, अब तो शरीर छूटेगा या तो भगवान छूटेगा, है ना। तो उन्होंने प्रण लिया कि आज जो है मैं पकड़ूंगा कौन मेरा भोग ले जाता है, भगवान खाते हैं कौन खाता है, कोई जानवर आदि क्या है। तो बिल्कुल भोग लगा के आंखें खोल करके, आंख बंद करते फिर खोलते, देखा तो देखा कि एक चांडाल रूपी व्यक्ति रोज वहां से उठा करके ले जाता है। उन्होंने कहा अरे रुको भाई, रुको रुको, क्या आप ये मेरा भोग उठा के ले आ रहे हो, ये तो सूखी रोटियां हैं, इस पे घी तो लगा लो, खाने का इतना शौक है, मैं हाथ से छीनूंगा नहीं, ब्राह्मण हूं, लेकिन आप खाओ तो घी लगा के खाओ ना। अब इतना बोलते ही वो जो चांडाल था वो सुनी नहीं रहा, वो बहुत तेजी से आगे भाग रहा है और ये पीछे पीछे भाग रहा, रुको, वो भागे जा रहा रोटी लेकर के। कहा यार घी भी नहीं चाहता, कैसा व्यक्ति है। भागते भागते वो जो पतला दुबला चांडाल रूपी व्यक्ति था वो गिर पड़ा। अब ये घबरा गए कि मैंने उसको है ना क्या कर दिया, उसके भोजन प्रसाद ग्रहण करते वक्त उसको परेशान कर दिया, भगा दिया है। जैसे कोई प्रसाद की थाली लेके बैठे और हम कहे उठो प्रभु जी उठो, हमें क्लीनिंग करनी है, उठो उठो, ये अपराध है। क्लीनिंग 5 मिनट बाद हो सकती है ना, अभी वो प्रसाद ले रहा है व्यक्ति, तो प्रसाद लेने देना चाहिए उसको। वो उठा दिए, उसको भगा दिए, तो बोले तो अपराध हो गया। और अब वो जब गिर गया तो बोले अब तो इसकी मृत्यु भी होने वाली लग रहा है और इसका पाप ब्राह्मण के सिर पे, तो पंखा करने लगे। और पंखा किया, अपनी जो चादर थी उससे पंखा कर रहे थे, इतने में ही उस चंडाल स्वरूप के सामने उन्होंने विनती प्रार्थनाएं करी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा याचना, वैष्णव अपराध हो गया मुझसे, व्यक्ति अपराध हो गया मुझसे, है ना। तो उस प्रकार से उतने में ही वहां से चतुर्भुज रूपी विष्णु प्रकट हो उस चंडाल में, शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा क्या कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, और मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, क्या तुम भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो। हाँ मैं तैयार हूँ। वह ने कहा क्योंकि तुमने तुलसी चढ़ाने मात्र से मुझको क्या कर दिया है, प्रसन्न कर लिया है। हाँ पत्रम पुष्पम फलम तो, तुलसी पत्र से आपने मुझे अधिक प्रसन्न किया। अद्वैत आचार्य ने तुलसी और गंगा जल से चैतन्य महाप्रभु को प्रकट किया शालिग्राम शिलाओं पे, तुलसी पत्र काली ना, तो तुलसी पत्र से तुमने मुझे प्रसन्न किया, चलो भगवत धाम तुम्हारे लिए विमान आया है। अभी महर्षि मुद्गल अपने उच्चारण में लगे, ओम स्व स्व जा रहे विमान, अरे ये गरीब कैसे ब्राह्मण जा रहा है। तो उन्होंने कहा अरे वो तो भक्त था, उसने हरि नाम लिया और ये क्या, और आप तो यज्ञ में आदि में लगे रहे। कहा इसका मतलब यज्ञ आदि का कोई फल नहीं है। कह रहे फल है इसका, लेकिन फल पाने के लिए दोबारा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जन्म मृत्यु संसार के चक्र से छूटने के लिए तो भक्ति एकमात्र रास्ता है। अच्छा ये बात है। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने मुक्ति पद के बारे में वर्णन किया सार्वभौम भट्टाचार्य को, उन्होंने कहा मुक्ति रहती है भगवान के चरणों में, मतलब भगवान के खुद के चरणों में। और कोई भक्त जो भागवत में मुक्ति पढ़ता है वो मुक्ति नहीं है जिसकी ब्रह्मवादी बातें करते हैं। ये मुक्ति वो मुक्ति है जो मुक्ति भगवान के चरण में रहती है। और भक्त को क्या चाहिए, भगवान का चरण, इसलिए वो मुक्ति पद का वर्णन श्लोक के अंदर वर्णन किया गया। मुक्ति पद मतलब कि हमें भगवान का पद चाहिए, चरण चाहिए, है ना। हम भी तो ये बोलते हैं भगवान के चरण चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो। तो भक्त जो चाहता है तो मुक्ति वहां रहती है, लक्ष्मी वहां रहती है। तो कोई बोले भगवान, भक्त को लक्ष्मी की कामना है, भगवत को क्या है, मुक्ति की कामना है। तो ये भागवत में मुक्ति भक्ति ये सब लिखी है, ये कामना इसीलिए क्योंकि हमें भगवान के चरण की कामना है। इसलिए चेतन महाप्रभु ने फिर कहा कि मुक्ति पद जो है भागवत गलत नहीं है। भागवत का मुक्ति पद वो ब्रह्मवादी के मुक्ति पद से अलग है, वो तो ब्रह्म ज्योति की बातें करता है और हम भगवान के चरणों की बातें करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि तुलसी पत्र मात्र से भगवान अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न होकर के भक्त पर अहेतु की कृपा करते हैं। कैसी कृपा, अहेतु की, बिना किसी मोटिव के, अहेतु, कोई हेतु नहीं है, है ना। लेकिन प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो सब कुछ करने के बाद में भी हम भक्तों को प्रीति क्यों नहीं उत्पन्न होती भगवान से, होती है प्रीति उत्पन्न, सब कुछ होता है लेकिन प्रीति उत्पन्न नहीं होती है। प्रीति का अगर उदाहरण लेना है तो ऐसे सोच सकते हैं कि किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जितनी उत्पीड़न होती है कि कब मिल जाए, एक मैसेज तो आ जाए, एक व्हाट्सएप तो आ जाए, एक पॉपअप तो आ जाए, ऐसी जो पीड़ा है वो भगवान के मंगला दर्शन करने में जिस दिन उत्पन्न हो जाए, तो ये तो फेक प्रेम के लिए इतनी पीड़ा मन में है, और एक रियल प्रेम, एक सच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई पीड़ा नहीं है। भगवान के दर्शन हो ना हो, कथा सुने ना सुने, जप हो ना हो, मजानी लाइफ, एकदम मजे में लाइफ चल रही है हमारी। तो सही मायने में भक्त वो है जो अपने इस कार्यक्रम के लिए, जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा सरेंडर हो। कुछ भी जाए लेकिन मेरी आज की, चाहे वो कभी भी करे, किसी भी वक्त करे, लेकिन वो कथा करे, अपनी आरती करे, सब कुछ करे, तो सही मायने में वो भक्ति पद पर बरकरार रहेगा और एक दिन भगवान की अहित की कृपा प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। जैसा इसमें बताया गया है कि वैष्णव सेवा करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि भक्त क्रियाओं तो पालन करने लग गए हैं, रिचुअल्स, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पालन नहीं करते हैं। स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअलिटी क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा करना। कोई कहे कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है मैं भक्त का भक्त हूं वो मेरा भक्त है ना। गोपीर भरते और पद कमले और दास 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 अनुदास। तो इसमें बताते हैं भागवत में तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में वर्णन है कि कैसे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, कृपा प्राप्त होगी। कौन से श्लोक से वर्णन कर सकते हैं तीसरे अध्याय के, तीसरे स्कंद के? तो कहते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायनो कथा तज्जोषणात अशु अपवर्ग वर्तनी श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमश्यति। अनुक्रमश्यति, क्रम से सारी चीजें प्राप्त होंगी। क्या चीजें प्राप्त होंगी? श्रद्धा, रति, भक्ति। पहली चीज क्या प्राप्त होगी? श्रद्धा, फेथ आ जाएगा व्यक्ति को भगवान की। अगर उसने क्या किया, सताम प्रसंगात, अगर उसने शुद्ध भक्तों की कथाओं को श्रवण करना शुरू किया, भक्तों का संग करना शुरू किया, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जिसको हम हमेशा सुनते रहते हैं, सताम प्रसंगा। लेकिन सताम प्रसंगा में क्या करना है? घर की चर्चा नहीं है। मम वीर संविदो, मेरी जो कथाएं हैं, मेरी वीरता की कथाएं हैं, उनको जो सुनेगा, भवन्ति हत कर्ण, और अपने कानों के अंदर रस को जैसे ही उसके जाएगा कथा रस, वो फिर क्या होगा, तुरंत अपवर्ग वर्तनी। अपवर्ग, अपवर्ग वर्तनी का मतलब है, पवर्ग होता है एक, एक होता है अपवर्ग। पवर्ग क्या होता है? प फ ब भ ब। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, प मतलब परिश्रम। कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है अपनी जॉब में, अपनी सेवा में, और फिर प करने से फिर क्या हो जाता है, फ, वो इतना थक जाता है कि ग्लूकोन सी चाहिए, ग्लूकोन डी चाहिए, है ना। तो एक बार एक हमारे द्वारका मंदिर में एक भक्त कीर्तन कर रहे थे और फिर वो रेस्ट करने चले गए और फिर देखा कि वो ग्लूकोन डी का डब्बा खरीदने जा रहे हैं। तो एक भक्त ने पूछा कि आप ग्लूकोन डी क्यों खरीदने जा रहे हैं, भगवान पे निर्भर नहीं है? करे नहीं, मैं ग्लूकोन डी पे निर्भर हूं, ग्लूकोन सी पीता हूं तो चेतना में थोड़ी शक्ति आती है, तो मैं कीर्तन करता हूं। तो उस पर काफी चर्चा हो रही थी, उसमें हम उस प्रसंग में नहीं जाएंगे क्या था और क्यों कर रहे थे वो चर्चा। तो सही मायने में ग्लूकोन सी ग्लूकोन डी शक्ति प्रदान नहीं करती है। रघुनाथ दास गोस्वामी को कौन सी ग्लूकोन सी प्रदान करती थी शक्ति? तीन दिन में बस छाछ पीते थे, कौन सी ग्लूकोन सी पीते थे वो? तो इसीलिए व्रत आदि रखने से, तपस्या करने से बड़ी शुद्धि होती है और शुद्धि से शक्ति आती है। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, सुबक स्वामी महाराज बोल रहे थे कि मंगला आरती और जपा ध्यान पूर्वक करने से हमारे अंदर प्रीचिंग पोटेंसी आती है, हम अच्छा प्रचार कर पाएंगे। और वरना क्या होगा, अगर हमारा हमारी साधना प्रॉपर नहीं है तो हम प्रचार में जाएंगे या सेवा में जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे उसको अच्छे से। शक्ति में शक्ति का संचार नहीं होगा। हम देखते हैं जितने भी सीनियर महाराज लोग हैं, रात दिन प्रचार कार्य में चलते रहते हैं और हम बोलते हैं ये शरीर के स्तर पर नहीं है, ये तो बहुत ऊंचे भक्त है। क्यों है ऊंचे भक्त वो? क्योंकि उन्होंने अपनी साधना को कभी नहीं त्यागा। तो साधना कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करनी चाहिए, भगवान को तुलसी अर्पित करना। तो यहां पर बोल रहे हैं कि उसके मुंह से फेन निकलने लगता है, फ, और फिर बड़बड़ाने लगता है रात को कि बहुत थक गया हूं, अब मुझसे मंगला आरती नहीं होगी अगले दिन, ब, और फिर क्या होता है, भ, भय उत्पन्न होता है उसके जीवन में कि अरे मैंने तो कोई भक्ति ही नहीं करी, सबको लगता है कि मैं बड़ा अच्छा भक्त हूं लेकिन मेरा मन जानता है मैं कितना अच्छा भक्त हूं, भय उत्पन्न होता है और फिर म, मृत्यु आ जाती है। तो वैसे ये एग्जाम्पल, इस उदाहरण को हम भौतिकवादी संसार के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम भी तो भक्त नहीं है, हमारे ऊपर भी तो उदाहरण लगता है, क्योंकि हम भक्त होते तो फिर क्या बात थी, भक्त हम है ही नहीं। हम भक्ति की प्रक्रिया में है, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, साधना डिवोटीज, बट वी आर नॉट डिवोटीज एक्चुअली। भक्त बनने के लिए बहुत ही श्रद्धा होनी चाहिए, रति होनी चाहिए भगवान से, और मति में भी भगवान होने चाहिए हर वक्त। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। हम तो भगवान के सामने खड़े होकर भी मन में चल रहा होता है बहुत कुछ, तो कहाँ हम भक्त हैं, कहाँ रति है भगवान से। तो अभी तो बस शुरुआत है, और हो सकता है कि वैष्णवों की कृपा हो तो परिवर्तन आ जाए जीवन में, तो भक्त बन जाए इसी जीवन काल में। तो अपनी प्रक्रियाओं को हम रखें, सताम प्रसंगा करें, तो भगवान कह रहे हैं कि अनुक्रम, अनुक्रम में प्राप्त होगी श्रद्धा, रति और फिर भक्ति। तो पहले श्रद्धा आ जाए, फिर रति आ जाए, और फिर भक्ति आ जाएगी अपने आप ही। तो इस तरह से अपवर्ग वर्तनी का मतलब है, ये है पवर्ग, और जो ये पालन करेगा, भगवान कह रहे हैं प्रसंग, भक्तों का संग, उसको क्या होगा, अपवर्ग वर्तनी, मैं पवर्ग को अपवर्ग में वर्तन कर दूंगा। तो इस तरह से इसमें बताते हैं। और वैष्णव अपराध से सदा सदा बचना चाहिए। जैसा कि हम सब कुछ प्रसंग भक्तों के संग भी करते हैं, और भागवत क्लास के 9 बजे तक हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, और फिर जैसे ही दूसरे दिन भागवत क्लास के बाद हम मिलते हैं, तो हमारी एकदम ही 9 बजे के बाद हमारी एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है दोबारा से, है ना। इस टाइम तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा, टच हो जाए तो सिर पे हाथ भी लगाएंगे, पर तुरंत जैसे ही भागवत कक्षा समाप्त हो, उसके बाद उस वक्त के बारे में बुरा बोलने में हमें रंच मात्र भी संदेह नहीं होता, है ना। काम ऐसे करके पैर लग गया तो टच करे फिजिकल, और जहां भक्ति का सवाल है, भक्ति संरक्षण, है ना। ऑफ फेंस मतलब अपने अपने बाड़े के बाहर जाना, फेंस के बाहर, ऑफ द फेंस चले जाना, वो ऑफेंस हम कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने सताम प्रसंगा भी किया, श्रद्धा भी उत्पन्न करी, लेकिन भक्त अपराध से नहीं बचे, तो फिर जीवन में भक्ति प्राप्त करना मुश्किल। तो यहां पर ऑफेंस किया है, इसके कारण उन्हें असुर योनियों में आना पड़ रहा है। तो ऑफेंस से हमें सदा ही बचना चाहिए। कहते हैं भगवान, साधुवा हृदयम अयम, मैं कौन, साधु कौन है जो मेरे हृदय में रहते हैं। साधुवा हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तु अहम, मद अन्यत्ते ना जानाती ना अहम तेभ्य मानवपि। वो कहते हैं मतलब साधु जो है वो मेरे हृदय में रहते हैं। तो अगर हमने किसी साधु की बुराई करी तो किसकी बुराई करी, भगवान के हृदय में। और भगवान कहते हैं जो साधु वही है जिसके हृदय में मैं रहता हूं। तो अगर हम वैसे ना समझे, ऐसे समझें कि साधु की बुराई की तो भगवान की बुराई करे। वो कहते हैं साधु कौन है, मद अन्यत्य ना जानाती, मेरे अलावा उसको कुछ जानता ही नहीं है, है ना वो। और मैं कौन हूं, मैं जो साधुओं के अलावा किसी को ज्यादा मोल भाव नहीं देता हूं, कृपा सब पे करते हैं, नास्तिकों पे भी करते हैं। हम ये कहें कि भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे घर ना गाड़ी आ गई है ना, हम जब से हरि नाम ले रहे हैं ना, गाड़ी हमारी पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई है, ये कृपा थोड़ी है, ये तो नास्तिकवादी के पास भी आ रही है। हमारी कृपा तो है भगवान में श्रद्धा, रति, भक्ति उत्पन्न होना, अगर ये है तो हमारी भक्ति ग्रो कर रही है ना, ये और कोई ग्रोथ का कोई है ही नहीं। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, यू कैन बिकम अ जीबीसी, यू कैन बिकम अ स्पिरिचुअल टीचर, यू कैन बिकम लीडर, यू कैन बिकम प्रेसिडेंट, उनका एक वो था स्लोगन, बट टिल द टाइम यू डोंट डेवलप टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी एंड लविंग डिवोशनल सर्विस विद कृष्णा, नो यूज, कोई उसका कोई फायदा ही नहीं है कि हम कुछ भी पोजिशन ले लें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है हम सोचें कि जिन्होंने पोजिशन ली उनके अंदर ऐसी भाव नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये उनके लिए, हमें एक दूसरे को नहीं देखना है जजमेंट, हमें अपने को देखना है कि हम पोजीशन या फिर किसी और चीज के लिए ना भागते रहे। हमें सच्चाई है कि हमें भगवान की रति उत्पन्न करने के लिए ही सेवाओं को सेवा के रूप से करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। जैसा कि अम्बरीश महाराज के प्रसंग में आप देखते हैं, अम्बरीश महाराज के साथ क्या हुआ, अम्बरीश महाराज भक्त थे और दुर्वासा मुनि बड़े योगी थे, बहुत महान योगी, लेकिन भगवान ने किसका सपोर्ट किया, वो बोलता था योगी का सपोर्ट नहीं किया, हट योगी थे, किसी को भी श्राप दे सकते थे, बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने अम्बरीश महाराज का सपोर्ट किया। इसका मतलब उन्होंने कहा साधुवा हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय में रहते हैं, साधु का कुछ भी किया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये बड़ी बात है समझने वाली। तो वैष्णव क्रिया मुद्रा विघिना बुझाए, और वैष्णवों को देखने मात्र से हम सोच सकते हैं कि अरे बड़े अपने आप को बनते हैं सीनियर, है ना, कैसे कार्य कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, अपने को बड़ा ये समझते हैं। तो सही मायने में हम उनकी क्रिया मुद्राओं से हम उनको जज कर रहे हैं, खुद को जज करने हैं, हमें खुद को जज करना है, तब सही मायने में हम भक्ति कर पाएंगे। चैतन्य भागवत में मध्य लीला में वर्णन है, कहते हैं, शूल पाड़ी सम यदि वैष्णवेर निंदा तथा पिया नास पाए कहे शस्त्र वृंदा। शूल पाणी सम, अगर कोई शिवजी के समान भी है, यदि वैष्णवेर निंदा, अगर वो वैष्णव की निंदा करता है, शिव वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णव में परम शंभु शिव भी अगर वैष्णव अपराध कर दे, कहते तथा पिया नास पाए कहे शास्त्र वृंदा, शास्त्र कहते उनको भी अपराध लगेगा। अगर कोई ये सोचे कि मैं शिव के बराबर बन गया हूँ, रुद्र की भक्ति करके मैं रुद्र अनुसार बन गया हूँ, वैष्णवों में महान है, लेकिन वो कह रहे शूल पाणी सम यदि करे वैष्णव निंद, अगर वो भी बन जाएगा तो उसको अपराध लगता है। तो हमारी क्या है, जो कि चेतन महाप्रभु कह रहे हैं कि सुंदर गार्डन बनाते हैं, मंगला आरती आ रहे हैं, बढ़िया सुंदर गार्डन बन गया, उसके ऊपर गुरु पूजा कर रहे हैं और सुंदर वृक्ष आदि निकल आए, और उसके ऊपर बहुत सुंदर फेंसिंग लगा दी भागवत कक्षा सुन करके, लेकिन हमने उसके अंदर गेट खोलकर एक पागल हाथी को एंटर करा दिया, तो क्या होगा, सारा कुछ विनाश कर देगा। तो कितना भी हम फॉलो करें नियम आदि को, लेकिन अगर हम वैष्णव अपराध से नहीं बच रहे हैं, तो फिर हमारा जो पूरा ये संसार है भक्ति रूपी, ये एकदम खत्म है। भक्त कहते शुरुआत में आया था बड़ा मन लगता था, जब से 2-4-5 साल निकल गए ना, अब बिल्कुल उत्साह समाप्त हो गया, मन ही नहीं करता मंदिर जाने का। मंदिर में भक्तों का ट्रीटमेंट देखकर ना मन ही नहीं करता मंदिर जाने का। भक्तों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपका ट्रीटमेंट अंदर से गड़बड़ है। भक्तों की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि आप भक्त नहीं हो इसलिए आपको दूसरे दुश्मन नजर आते हैं, है ना। तो अगर हम इस पार चीज पे काम करें, तो इसलिए कहते हैं भगवान का ये कथन है कि उनका ऐश्वर्य वैष्णवों के आशीष के कारण है। भगवान ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि वैष्णवों के कारण मैं हूं, है ना, वैष्णवों के कारण मैं हूं। तो इसका मतलब अगर हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो फिर भगवान को हम बोल रहे हैं तुम कुछ नहीं हो हमारे जीवन में। तो इसलिए वैष्णव अपराध से जो व्यक्ति बचेगा, और वो कहते हैं आगे श्रील प्रभुपाद अन्य लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि वैष्णव का आदर करें जो भगवान के ही भक्त होते हैं, कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो सही मायने में हम भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। समय अधिक ले लिया मैंने, क्षमा करिएगा गुरुजी।